तोड़कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। सूत्रधार जब भी चर्चाओं में आता है, जब भी सूत्रधार के विषय में चर्चा की जाती है, तो हमेशा हमारे सामने यही बात आती है कि यह एक जो यात्रा सूत्रधार की रही, वह एक कठिन संघर्ष और कठिन तप अर्जित करने के बाद हासिल हुई है। तो इसी यात्रा में जब हम कभी भी यात्रा करते हैं तो कई पायदान, कई माइलस्टोन हमारे बीच आते हैं। तो अभी कुछ ही समय पहले सूत्रधार के पास एक माइलस्टोन आया था, जो कि था सूत्रधार का पजल। ऐसा ही एक और माइलस्टोन सूत्रधार ने अपनी यात्रा में जोड़ा है, जो है रणभूमि कुरुक्षेत्र का बोर्ड गेम। ये भी बच्चों के लिए ही एक खेल आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रधार के जो फाउंडर हैं गौरव तिवारी, उनका मानना है कि अगर किसी जीवन की बुनियाद ही बेहतर हो तो उसकी आने वाला जो समय होता है वो और भी उज्जवल बन जाता है। तो मैं स्वागत करूंगा गौरव तिवारी जी का। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है सूत्रधार का नया बोर्ड गेम, जो हाल ही में रिलीज हुआ है रामनवमी के शुभ अवसर पर। तो गौरव जी नमस्कार।
नमस्कार।
सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो यात्रा रही, ये जो पूरी रिसर्च और कैसे इसका आइडिया आया, कैसे इसको एग्जीक्यूट करने में क्या क्या कठिनाई देखनी पड़ी, कैसे आपने लोगों को समझाया कि हम असल में करने क्या वाले हैं, फिर उसका जब आउटकम निकल के आया, जब वो रिसर्च और ये सब के, तो अंदर आपके मन में कैसा भाव जागा, ये सब बताइए थोड़ा।
तो रणभूमि से पहले सूत्रधार के बारे में भी बताना पड़ेगा। उसके लिए तो जो सूत्रधार की जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी कुल ऑलमोस्ट 3 साल पहले, और मेरी बेटी तब 3 साल की थी और मेरे मम्मी पापा आए हुए थे वहाँ पे मुंबई में। तब मैं मुंबई में रहता था और उसकी मेरी बेटी का 3रा जन्मदिन था और मम्मी पापा उसके लिए आए हुए थे। और मैंने देखा तो एक दिन अचानक ऐसा, और कोरोना का उस समय थोड़ा सा वो हो रहा था कि भाई ट्रैवल बंद हो रहा है और वो सब, लॉकडाउन अब तब तक अनाउंस नहीं हुआ था बट रिस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे लगाए जा रहे थे। तो उसकी वजह से हम सब लोग घर में ही थे। मेरी जॉब थी वो कलकत्ता में थी, तो अब ट्रैवल बंद था तो मैं घर पे ही था, कलकत्ता जा नहीं सकते थे हम लोग। तो उस बीच में मैंने देखा कि मेरी माताजी शिव पुराण पढ़ रही हैं और मेरे पिताजी, मैंने अपनी बेटी को कहानियां सुनाने के लिए पंचतंत्र की किताब खरीदी थी, वो संस्कृत और हिंदी वाली। तो मैंने देखा मेरे पिताजी वो किताब पढ़ रहे हैं, तो जिन्होंने जीवन में कभी न्यूज़पेपर के अलावा कुछ और नहीं पढ़ा वो पंचतंत्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुंबई में ऑब्वियसली उनकी लाइफ थोड़ी लोनली सी हो गई थी क्योंकि वहाँ पे उतना सोशल लाइफ नहीं था जितना उसके यूज टू थे। और मेरी बेटी बगल में बैठकर यूट्यूब पे कुछ ना कुछ पेपा पिग या कुछ कुछ वैसा जो शोज आते हैं यूट्यूब पे वो देख रही थी। तो इसमें मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये हमारा बचपन और मेरे बच्चों का बचपन इतना अलग क्यों है। उसमें मुझे दो चीजें समझ में आई कि एक तो ये कि जब हम लोग बड़े हो रहे थे तब हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे। मेरे घर में बहुत सारे लोग थे, मेरे चाचा चाची थे, मेरे दादा दादी थे और भी लोग थे, कजन्स थे, और उन सब में हमेशा किसी घर को अगर ले लो, ज्वाइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं उनके घर में कोई ना कोई होता है जिसको कहानियां बहुत अच्छी सुनानी आती हैं और वो अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। तो टिपिकल टर्म में बोलो तो दादी नानी की कहानी बोल सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि वो दादी नानी हो। मेरे केस में मेरी चाची थी जो ये कहानियां बहुत सुनाती थी, तो कभी वो वामन अवतार की कहानी सुनाई, कभी उन्होंने प्रहलाद की कहानी सुनाई। तो इस तरीके की जो कहानियां सुनकर हम बड़े हुए, पहली चीज तो वो हमारे बच्चों को मिल नहीं रही क्योंकि अब हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते नहीं है, तो वो एनवायरनमेंट अब नहीं है कि हम बच्चों को कोई ना कोई घर का बड़ा या घर का हम उम्र उनका जो उनको कहानी सुना सके। और दूसरी चीज क्या हुई कि अब जो टेक्नोलॉजी है या जो उनको एक्सेस है वो भी चेंज हो गई। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमारे पास ऐसा नहीं था कि फोन उठाया, यूट्यूब चलाया और कुछ वीडियो देख लिया, करेक्ट। उसमें ये भी हो गया कि भाई बच्चों को अगर हम कहानी सुनाने का प्रयास करें भी और जान के कि भाई अभी उनके पास टीवी फोन और वो सब अवेलेबल है, तो क्या उनको वो सेम तरीके से कहानी सुनाकर उनको इंगेज किया जा सकता है? तो ये दो सवाल मेरे दिमाग में उठे और उसको लेकर मैंने ये सूत्रधार की जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया। अपने कुछ दोस्तों को भी इसमें जोड़ा जो हमारे साथ को-फाउंडर बने इस जर्नी में, और फिर उसके बाद हम लोगों ने ऐसा महाभारत, रामायण, पुराणों से थोड़ी छोटी कहानियां बनाई, बच्चों की कहानियां निकाली। जैसे महाभारत में ही अगर पढ़ो तो कुछ 40-45 कहानियां ऐसी मिल जाएंगी जो बहुत ही, जिनको आप मोरल स्टोरीज बोलते हो, जो पंचतंत्र स्टाइल की कहानियां हैं, राइट, फेबल्स बोल सकते हैं अंग्रेजी में, दंत कथा हिंदी में बोल सकते हैं। तो ये जो कहानियां हैं ये महाभारत में भी बहुत हैं, जो बच्चों को ज्ञान देने के लिए कि भाई गीदड़ के साथ क्या हुआ, राइट, या घमंडी पेड़ के साथ क्या हुआ। तो इस तरीके की जो कहानियां हैं ये हमने निकाली और उसके बाद वो हमने फिर अपने ऐप लॉन्च किया, हमने फिर वो ऐप में डाली और उसके बाद फिर बहुत सारे पेरेंट्स से ये सवाल आने लगे कि भाई बच्चों को कैसे ये महाभारत रामायण से इंट्रोड्यूस किया जाए। ये कहानियां तो ठीक हैं लेकिन दूसरा चीज ये हो गया कि जब आप कंपीट कर रहे हो तो मेरा बच्चा, अगर आप टीवी में दिखाओ उसको एल्सा या मतलब जो फ्रोजन या वट एवर डिज्नी का जो कहानियां हैं, और आप उसको दिखाओ सूत्रधार का बनाया हुआ वो वीडियो अरुणी और रुक्मणी की कहानी, तो सिनेमैटिक वैल्यू वाइज ऑब्वियसली डिज्नी के पास अरबों खरबों रुपया है, वो बहुत अच्छा क्वालिटी का कंटेंट बनाते हैं, तो बच्चा उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, राइट। तो हमारे पास वो एक डिसएडवांटेज भी था। तो हम उस बारे में, ये था कि हमारा डिपेंडेंसी हमेशा पेरेंट्स पे था कि भाई पेरेंट्स अगर चाहें तो अपने बच्चों को अपने साथ जोड़ के हम उनको कहानियां सुनाएंगे और वो बच्चों को सुना सकते हैं, ताकि बच्चा बहुत ज्यादा स्क्रीन पे भी समय ना बिताए और माँ बाप के साथ भी थोड़ी बॉन्डिंग हो और इस तरीके से थोड़ा एक फैमिली का एक एनवायरमेंट क्रिएट हो बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच में। तो ये था सूत्रधार का। और उसके बाद फिर हमें ये लगा कि लेकिन अभी भी एक डिसएडवांटेज तो है ही, वो सबसे बड़ा ये है कि पेरेंट्स के पास भी समय कम है और दूसरे स्पेशली क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, मैनी ऑफ द टाइम्स दोनों ही पेरेंट्स अर्निंग है, जॉब में जा रहे हैं, समय कम है। और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करो कि वो महाभारत 7-8 हज़ार पेज की बुक पढ़ें और उसको फिर उससे कहानियां निकाल के बच्चों को सिखाएं समझाएं, और बच्चे को भी क्यूरियसिटी उसकी अलग डायरेक्शन में है कि उसको पेपा पिक देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो बहुत चैलेंजिंग है ये। लेकिन ये जरूरी है क्योंकि जो हमारा जो कल्चर है, जो हमारा जो हेरिटेज है, ये इन्हीं सब कहानियों के ऊपर बना हुआ है। और अगर हम ये कहानियां अपने बच्चों को नहीं सुनाएंगे और उनको इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा तो एक समय ऐसा आ सकता है कि हम लोग की ये कहानियां विलुप्त भी हो सकती है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। तो इस समस्या का समाधान निकालने के लिए हमने कहा कि बच्चों को कुछ केवल मतलब कहानियां फोन या टीवी के माध्यम से देने की बजाय उनको कुछ फन एक्टिविटीज, एंटरटेनिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया जाए। और उसको सोच के फिर वो जिग्सॉ पजल्स हमने लॉन्च करी कि भाई जिग्सॉ पजल करेगा आदमी 5-7-10 मिनट, बच्चा उसमें एंगेज रहेगा और फिर उसको देखेगा अरे ये क्या चित्र बन के आया, उससे रिलेटेड उसको क्यूरियोसिटी आएगी तो वो उसकी कहानी देख सकता है। हमारे पास ऐप में है, अब हमने यूट्यूब में भी काफी सारी कहानियां डालना शुरू कर दिया है, तो बच्चा वहां पे देखेगा कहानी और बच्चे को अच्छा लगेगा, समझ में आएगा, एसोसिएशन बिल्ड होगा, राइट, ये कुंभकर्ण है, ये इसको श्री राम जी ने मारा था, क्या कहानी थी उसकी। तो इस तरीके से बच्चों को क्यूरियोसिटी आएगी और वो उसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे और उसके बारे में जानना चाहेंगे। अब ऐसे अप्रोच करोगे तो फिर वो कंपटीशन अब नहीं रह गया, राइट, अब उसका एक जर्नी जो है टूवर्ड दिस स्टोरी वो एक दूसरे रास्ते से आया है। अगर हम सेम रास्ते से अगर हम डिज्नी से कम्पीट करने की कोशिश करें तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास, जैसा कि मैंने बोला, हमारे पास बजट नहीं है उतना कि हम उतना वो लेवल का कंटेंट बना पाए। हो सकता है भविष्य में बनाए और बनाना चाहेंगे भी, लेकिन अभी नहीं कर सकते। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप मैं ये कहानी, मैं लोगों को बोलता हूँ कि आपकी अगर आपको भूख लगी है तो आप थाली में रसगुल्ले का वेट नहीं करेंगे, आपकी जैसे ही रोटी आएगी आप खाना शुरू कर देंगे, रसगुल्ला बाद में आएगा, डिजर्ट का टाइम आएगा, तो नहीं भी आएगा तो पेट तो भरा आपका। तो वो थॉट प्रोसेस से मैंने इसको एक एक कदम चल के उसको आगे बढ़ना चालू किया। तो पहले हम जो अगर आप ऐप में का स्टोरीज देखोगे तो बहुत ही मतलब बेसिक स्टोरी लाइन के साथ, बेसिक आर्टवर्क के साथ बनाया। फिर हमने उसमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया तो कंटेंट का क्वालिटी भी इम्प्रूव हो गया, उसमें म्यूजिक भी इंट्रोड्यूस किया, प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट से रिकॉर्ड करवाना स्टार्ट किया। उसके बाद जब ये आया कि भाई अब फिजिकल एक्टिविटीज दी जाएं और जिग्सॉ पजल्स लोगों ने उसमें सराहा, पेरेंट्स ने खरीद के बच्चों को दिखा खिलाया और पेरेंट्स को ने शेयर किया अपना फीडबैक कि भाई बच्चों को अच्छा लगा, और बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब पे अपने बच्चों की खेलते हुए फोटोग्राफ्स और वीडियोस भी पोस्ट किए, तो हमने कहा यार ये तो अच्छा है और इसको हम लोग इस पे और यूटिलाइज करना चाहिए, इस पे डबल डाउन करना चाहिए। तो पजल अब हर बच्चे को जरूरी नहीं है पसंद हो, और मैं कल परसों किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि जनरली जो लोग बोर्ड गेम खेलते हैं वो पजल नहीं खेलते, जो पजल खेलते हैं वो बोर्ड गेम नहीं खेलते, बहुत कम ओवरलैप है। तो हमारा ये था कि भाई महाभारत की कहानी को हम बच्चों से कैसे इंट्रोड्यूस कराएं। तो मैंने पिछले 3 साल में महाभारत 3 बार पढ़ी, पूरी महाभारत पढ़ी हमने, गीता प्रेस वाली महाभारत पढ़ी हिंदी में जो ट्रांसलेशन है उनका संस्कृत श्लोकों के साथ, हमने कृष्णी मोहन गांगुली जी का जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ा, और बहुत ही रिसेंटली विवेक देबरॉय जी का जो ट्रांसलेशन है वो पढ़ा। तो इतना सब पढ़ने के बाद क्या होता है, जब आप कोई भी एक लिटरेचर को बार बार रिविजिट करते हो तो महाभारत ऐसा लिटरेचर है, हर बार उसमें आपको कुछ नया समझने को मिलता है, कुछ नया आप डिस्कवर करते हो। तो वो मेरे साथ हो रहा था। तो जब ये युद्ध वाले चैप्टर्स आते थे तो मुझे लगता था यार ये इतना फैसिनेटिंग है कि जितने डिटेल में, जितने एक्सप्लेनेशन के साथ उन्होंने वेदव्यास जी ने लिखा है, वैसा किसी भी लिटरेचर में, किसी भी सिनेमा में आज तक मैंने नहीं देखा। जो भी आपकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई है बट वो लेवल का, और मैं ऐसे इमेजिन करता था आंख बंद करके कि भीम दौड़ रहे हैं और हाथियों की सेना पर, और एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है एकदम, समझ रहे हो, वो पेपी म्यूजिक हैंस जिमर स्टाइल, और गदा से एक हाथी गिराया, लड़ाई करी। तो ये मेरे दिमाग में बहुत इमेजिनेशन आते थे, तो मैंने कहा यार इसको हम क्यों ना, इमेजिनेशन तो हम बच्चों की बहुत ज्यादा होती है, और मेरे अभी 3 बच्चे हैं, मुझे पता है उनकी इमेजिनेशन की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो अब हम डिज्नी स्टाइल कंटेंट नहीं बना सकते, बट क्या मैं बच्चों को वो इमेजिनेशन दे सकता हूँ कि वो अपने दिमाग में ही सोचें कि ये हुआ तो क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, और इसको ध्यान में रख के फिर एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुई कि क्यों ना इसको हम एक गेम के फॉर्म में बनाएं। तो पहले हमने सोचा कि भाई एक वीडियो गेम, या जैसे वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट जैसे बोर्ड वीडियो गेम्स वगैरह है वैसा कुछ बनाया जाए, लेकिन अगेन वही हमारे साथ समस्या आई कि भाई बजट नहीं है। तो हमने कहा इसको हम बोर्ड गेम के रूप में डेवलप करेंगे। और उस जर्नी में क्या हुआ कि पहले ये बहुत सारी चीजें हैं, एक इस गेम की भी एक वो है, जर्नी है, इवोल्यूशन है कि बोर्ड क्या करेगा, व्हाट व्हाट इज बोर्ड रिप्रेजेंटिंग। तो ये थॉट आया कि भाई महाभारत का जो युद्ध हुआ था 18 दिन का, उसमें बहुत सारे बैटल्स हुए थे, तो कुछ की बैटल्स को सेलेक्ट करो। और ये भी समस्या है कि जैसे आप गेम वगैरह डिजाइन करते हो तो आप हमेशा एक पॉपुलर वो चीज पे डबल डाउन करने की कोशिश करते हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को आप बोलो कि महाभारत पे गेम बनाओ तो वो उसके दिमाग में आएगा कि मे बी यू कैन प्ले एज अर्जुन, आप हो सकता है अभिमन्यु की तरह खेल सकते हैं ऐसा अवतार लेके ऐसा। लेकिन मैंने कहा कि अगर हम वो करेंगे तो उनका फेट डिसाइडेड है, राइट? अर्जुन के साथ युद्ध में क्या हुआ सबको पता है, अभिमन्यु के साथ युद्ध में क्या हुआ सबको पता है, सात्यकी के साथ क्या हुआ सबको पता है। वो हम स्टोरी लाइन जो है वो हम चेंज नहीं करना चाहते थे, बिकॉज हम चाहते थे कि महाभारत के साथ हम छेड़छाड़ ना करें जो इवेंट हुए। तो उसका एक सोल्यूशन ये निकाला कि क्यों ना, अगर युद्ध के बाद ऐसा तो है नहीं कि दोनों साइड के सब लोग मर गए थे या एक साइड के सब लोग मर गए थे। जैसे कि अगर आप महारथियों में देखें तो अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा पांडव साइड से जीवित बचे थे, इवन संजय भी जीवित बचे थे। उस तरीके से अगर आप पांडव साइड में देखें तो वहां भी पांडवों के अलावा सात्यकी जीवित बचे थे, जुजुत्सु जीवित बचे थे। तो ऐसे और भी सैनिक रहे होंगे जो बचे होंगे, जैसे अब बाद में युधिष्ठिर एक्सप्लेन करते हैं, रिकॉल करते हैं कि, तो उसमें बताते हैं कि भाई इतने लोग मरे, इतने लोग गायब हो गए, खो गए, इतने लोग बचे। तो वो सब जो ध्यान में रख के हमने बोला कि क्यों ना एक जो आप गेम खेल रहे हैं वो आप एक कॉमन सोल्जर की तरह खेल रहे हैं, तो या तो आप कौरव सेना का हिस्सा है या आप पांडव सेना का हिस्सा है। अब ये जो बोर्ड है ये एक जैसे धर्म चक्र होता है, इसीलिए वो हमारा लोगों में चक्र भी बना हुआ है। तो वो जो धर्म चक्र बोल लो, या आप उसको बोल लो कर्म चक्र बोल लो, या जो भी बोल लो, वो बोर्ड जो है वो बैटल है, आप उस बैटल में है। तो एक तरीके से अगर आप सोचो तो आप बोर्ड के अगेंस्ट ही खेल रहे हो, एक तरीके से अगर आप देखो तो। आप चाहे कौरव हो या पांडव हो, बोर्ड को सर्वाइव करना है आपको, और अगर आप वो युद्ध सर्वाइव कर गए तो एंड में आप युधिष्ठिर के समाज का हिस्सा बनेंगे, युधिष्ठिर की कोर्ट का हिस्सा बनेंगे। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है ना कि भाई जीत गए तो फिर हमने खोपड़ियों के ढेर लगा दिए कि आप तो हम जीनोसाइड करेंगे, वो नहीं था हमारा कल्चर, है ना। तो युद्ध लड़ा, एक पर्पज से लड़ा, वो सॉल्व हो गया। उसके बाद जो है अब कृपाचार्य जो थे वो कौरव कोर्ट का हिस्सा, युधिष्ठिर की कोर्ट का हिस्सा बने, है ना। कृतवर्मा वापस द्वारका चले गए, श्री कृष्ण के साथ वो मतलब सात्यकी और कृतवर्मा लड़ रहे थे द्वारका युद्ध के बाद, द्वारका में वो साथ में रह रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि आप युद्ध हार गए तो आपको मार दिया जाएगा, आपको मतलब खत्म कर दे। युद्ध खत्म, वापस से हॉस्टिलिटीज खत्म, आपस में जो आपका सद्भाव है वो वापस है, आप उसको एनिमोसिटी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो वो एक मैसेज भी, एक अच्छा मैसेज है कि आप चाहे कौरव सेना से लड़ें या पांडव सेना से लड़ें, आप अंत में युधिष्ठिर के राज्य का हिस्सा बनेंगे अगर आप सरवाइव करते हैं तो। अब क्वेश्चन आया सरवाइव करने का, तो उसके हिसाब से फिर हमने वो युद्ध के जो इवेंट्स हैं उनको बोर्ड में प्लॉट किया। और युद्ध 18 दिन चला था और 2 रात चला था, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो बोर्ड में 0 से 1 से 100 तक आपको जाना है, और हर ब्लॉक जो है वो 5 दिन का ब्लॉक जो है वो 1 दिन को रिप्रेजेंट करता है। उसमें किसी दिन का हमने एक इंपॉर्टेंट बैटल पिक किया है, किसी दिन के 2 इंपॉर्टेंट बैटल पिक किए हैं। और जैसे कि देखो तो 13, 14, 15 दिन के राउंड की जो लाइंस थी वो ब्लर हो गई थी, क्योंकि वो युद्ध लेट लेट तक हो रहा था। 14वें दिन तो पूरी रात चला, फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग उसको रोक के फिर अगले दिन सुबह चालू किया, तो वहां पे थोड़ी आपको लाइन ब्लर होती भी दिखेंगी बोर्ड पे। तो जिन लोगों को महाभारत पता है वो लोग इसको और भी मतलब ये जो जो सटल तरी चीजें हैं उससे आपका गेम प्ले इफेक्ट नहीं होता, बट जब आपको पता लगता है कि अरे ये है, ये सोच के बनाया इन्होंने, तो आपको बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि अरे वाह, जो ईस्टर एग्स बोलते हैं, तो उस तरीके से सोच के फिर हमने वो इवेंट प्लॉट किए। और फिर उसमें हमने कहा कि भाई इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और क्या किया जाए, तो फिर हमने दिव्यास्त्रों को इंट्रोड्यूस किया। मैंने अपने एक कागज में उसके प्रिंट आउट लेके, इवेंट्स लिख के, स्केच पेन से क्रिस क्रॉस करके अपने बेटी के साथ खेला, उसके फ्रेंड्स के साथ खेला, उनको भी अच्छा लगा। तो मैंने कहा कि यार इसको और डेवलप कर सकते हैं, और फिर उसके बाद मतलब यहाँ से ये जर्नी की शुरुआत हुई। सो वेरी लॉन्ग आंसर, बट इट वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें सूत्रधार की जर्नी का भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर सूत्रधार की जर्नी नहीं होती 2.5 साल की, तो ये जो हमारा 6 महीने का रणभूमि का जर्नी हुआ वो होता ही नहीं, इम्पॉसिबल हो जाता।
ये बात मुझे कहीं ना कहीं वैसे ही लगी कि इस पूरी मतलब शुरू से लेकर अभी तक और हो सकता है आगे भी कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं या जो शिशु वर्ग है वही सूत्रधार की चीजों का प्रेरणा स्रोत रहा, और उसका जो आउटकम निकल के आया वो भी उन्हीं के लिए ही निकल के आया। तो इस पर वो 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि पहले सीधा सा रास्ता सुझाया हमें, फिर कहानी में वापस बुलाया हमें, जिंदगी का हुनर जिंदगी को ना था, एक पीढ़ी ने जीना सिखाया हमें। तो कहीं ना कहीं
तो
सूत्रधार
ये अनुज, ये जो तुमने बोला है ये बहुत ही रहस्य मतलब गूढ़ बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो इंफॉर्मेशन है, जो मेमोरी है, जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस हैं, वो बहुत, हर चीज आप किताब में नहीं लिख सकते, हर चीज की आप हिस्ट्री नहीं लिख सकते। इनफैक्ट ज्यादातर अगर आप देखो तो हिस्ट्री हमेशा मेन मेन इवेंट्स का कलेक्शन होता है। हिस्ट्री में एक कॉमन आदमी के जीवन बहुत कम लिखा जाता है। तो जो लिव्ड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो जनरेशनल स्टोरी टेलिंग के थ्रू अगली जनरेशन को पास होते हैं कि भाई मेरे दादा दादी ने मुझे बताई कहानियां। तो जैसे वो रामायण महाभारत की कहानियां बताते थे, वैसे वो हमारे पारिवारिक कहानियां भी, हमारे गांव की फोकलोर्स भी बताते थे कि देखो फलानी जगह पे एक ये पीपल का पेड़ होता था, वहां पे ये था। तो वो जो कहानियां हैं वो ऐसे ओरल ट्रेडिशन से ही ट्रांसफर होती हैं, और वो होता रहेगा। अभी टेक्नोलॉजी की वजह से आप हो सकता है उसका पॉडकास्ट बना दें, वीडियो बना दें और वो रिकॉर्ड हो गई, और हो सकता है इट हेल्प्स अस कि भाई वो आगे जनरेशन में ट्रांजिशन हो। और ये भी एक हमारे दिमाग में था कि भाई अगर ये जैसे बहुत जगह मिथ है कि भाई महाभारत को घर में रखोगे तो कलह होने लगेगा, तो ये एक बहुत बड़ा डेंजर है, राइट? बिकॉज इस वजह से क्या होगा कि भाई पब्लिशर किताब पब्लिश नहीं करेंगे क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे हैं। अब वो पब्लिश नहीं करेंगे, वो आउट ऑफ प्रिंट चली जाएगी कुछ जनरेशन बाद। और अगर मान लो ये मिथ लेट से 100% लोग बिलीव करने लग जाए एट सम पॉइंट इन टाइम, तो विद इन अ जनरेशन महाभारत की पब्लिशिंग बंद हो जाएगी, राइट? और अगर वो बंद हो गई तो हमारा जो इतना ज्ञान है, जो इतना नॉलेज है, वो कहाँ चला जाएगा? वो तो खो जाएगा ना। एंटरटेनिंग स्टोरी एक तरफ, बट उसके अलावा बहुत सारा ज्ञान भी है, तो हमें उसको खोने नहीं देना। तो हमारी अगली जनरेशन अगर हेलोवीन मनाने में बिजी हो गई, राइट, तो हमारा वो महाभारत का जो ज्ञान है वो कैसे सीखेंगे? अब वो डिज्नी मूवी देख के ये सीख लेंगे कि भाई ट्रू लव कॉन्कर्स एवरीथिंग, बट क्या ये प्रैक्टिकल है? आप मार्केट में जाओगे, चार दोस्त बनाने पड़ेंगे, तो ये जो आपका ट्रू लव कॉन्कर्स एवरीथिंग है, ये लर्निंग कैसे हेल्प करेगा आपकी? आप हर आदमी से ट्रू लव तो नहीं कर सकते ना। सिंपल सी बात है, इवन डिज्नी में वो मैलेफिसेंट मूवी में बताया कि ट्रू लव डजेंट एग्जिस्ट। सो बट एनीवे, पॉइंट ये है कि जो हमारे मैसेजेज हैं, हमारी स्टोरीज हैं, मेरा पर्सनल मानना ये है कि वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिखा गया है, बहुत ज्यादा सोच समझ कर उसकी रचना की गई है। और वो उन्होंने उसमें मेंशन भी किया है, वेदव्यास जी क्या कहते हैं कि भाई आपके लिए ये लिखा गया है ताकि आप इसको पढ़ें, इससे सीख लें और उस सीख पर अपना जीवन जो है उसको उस आधार पर ढालें, करेक्ट? तो जब आप उसको पढ़ेंगे ही नहीं तो सीख कैसे लेंगे, और जब सीख ही नहीं लेंगे तो आधार पर ढालेंगे कैसे? और हमारे जीवन में मोरल एजुकेशन कहां से आती थी? इन्हीं कहानियों से आती थी ना। अगर तुम सोचो तो बिना उसको बहुत ज्यादा टिम टॉम टॉम किए, बहुत ज्यादा उसके बारे में बात किए, हमको ऐसे नहीं बताया था बेटा वहां जाओगे तो ऐसा खतरा है, राइट? हमको कहानियां बताई जाती थी और हम अपने आप सीख जाते थे उसका मैसेज, राइट? तो जब कोई चीज जबरदस्ती सिखाई जाती है तो उसको उसका जो सीखने का जो बच्चे का वो होता है वो कम होता है। बट जब वो अपने आप ही ये चीज डिस्कवर करता है कि अरे हाँ ऐसा होगा तो ऊंट के साथ ऐसा हुआ, ओहो मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मतलब आप उसको थोड़ा, जैसे मेरी बेटी है, वो कहानी, अब वो स्कूल जाने लगी तो उसको कहानी सुनाई कि भाई अर्जुन था, अर्जुन ने द्रोणाचार्य ने बोला कि रात में इसको खाना मत सर्व करना, रात में खाना खा रहे थे और दिए बुझ गए, हवा चली, अर्जुन ने खाना बंद नहीं किया तो अर्जुन को स्ट्राइक हुआ कि मैंने ये क्यों कर पाया। अर्जुन ने सोचा और तो उससे उसको उसने निष्कर्ष निकाला कि क्योंकि ये मैंने इतनी बार किया है कि मुझे अब उसको देखने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस, राइट? तो उसके बाद वो और प्रैक्टिस करने लगा, राइट? फिर वो चिड़िया की कहानी की, राइट, कि भाई आपको क्या दिख रहा है? दुर्योधन बोले मैं तो नीचे देखते नहीं, मुझे तो पेड़ का ऊपर दिख रहा है, आसमान दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं। युधिष्ठिर बोला मुझे खाली अपना टारगेट दिख रहा है, फोकस। तो ये जो कहानी है, तो ये मैं बेटी को बोलता हूँ कि भाई अगर तुमको कोई नई चीज सीखनी है तो उसके लिए फोकस और प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में क्या है, अटेंशन स्पैन कम हो गया है, किड्स आर नॉट एबल टू डू वन थिंग एट ए टाइम, राइट? खाना खाते समय भी फोन पे वीडियो देखना, साला खाना भी एक टाइम पे अपने बिल कंसंट्रेट करके नहीं खा पा रहा बच्चा आज की डेट में। तो ऐसे बच्चे को आप फोकस और प्रैक्टिस कैसे सिखाओगे? क्या आप बोल के सिखा सकते हो उसको? नहीं सिखा सकते। उसको खुद जब रियलाइज होगा कि अरे नहीं ये जरूरी है, अब ये उसको इंटरेस्ट कैसे आएगा? आपके पास डिज्नी जैसा वो तो है नहीं कि आप उसको बहुत अच्छा वीडियो बना के बना दिया और उसको देख के बच्चे ने बोला वाह वाह बड़ा मजा आया, इसकी और कहानियां देखेंगे। वो करना जरूरी है, वो हम करेंगे जब हमारे पास वो उसकी सामर्थ्य होगी, वो भी करेंगे। लेकिन उसके पहले हम उसको, क्या करता है बच्चा आज की डेट में, मिट्टी से खेलता है, गार्डन में खेलता है, गेम्स खेलता है, वो एक्टिविटीज में हम इन चीज को कैसे घुसाएं, है ना? तो उसको ये नहीं लगेगा कि ये मेरे को जबरदस्ती महाभारत सिखाने की कोशिश करी जा रही है या मुझे जबरदस्ती ज्ञान दे रहे हैं। ओके बेटा, खेल खेल रहे, सांप सीढ़ी खेलते हो आप रणभूमि खेलो। और फिर उसमें बोलेगा ये फ्लैग किसका है, इसमें ये मंकी बना हुआ है, ये कौन है? बोले ये अर्जुन का है। अच्छा अर्जुन इतना, ये कौन सा अस्त्र मारा? सो उसकी क्यूरियोसिटी आएगी, धीरे धीरे फिर वो उसको और जानने की इच्छा होगी। उसके लिए फिर हमने वीडियोज वगैरह भी बनाए, वो देखेगा और आगे बनाएंगे, तो वो एक जर्नी उसकी स्टार्ट हो जाएगी। और वो स्टार्ट हो गई तो फिर मेरा ये मानना है कि महाभारत इतना एंटरटेनिंग और इतना ज्यादा इंट्रीगिंग है कि एक बार वो जर्नी स्टार्ट होगी तो फिर वो अपने आप वो साहित्य की क्या बोलते हैं, एक इतना ज्यादा खुद का उसका एक फीचर है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कि जब आप उसमें घुसोगे तो वो अपने आप को अंदर लेता चला जाएगा, फिर मुझे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, मेरी खाली मेहनत इतनी है कि मैं उसको एक बार इसको इंट्रोड्यूस कर दूं बेटा ये, उसके बाद वो बच्चा खुद से उस चीज को एक्सप्लोर करेगा आफ्टर सर्टेन एज। तो हमको उसको 3 4 5 साल तक पकड़ के रखना पड़ेगा। तो रणभूमि ये लॉन्च किया, उसके बाद थोड़ा अभी वो 2 साल बाद उसको एक और कोई गेम लॉन्च करेंगे, उसमें इसी का और इलेबोरेट वर्जन हो सकता है, और डिटेल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर थोड़ा और बड़ा होगा 2 साल बाद तो एक और इसका वो होगा एडवांस्ड, जिसमें और इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट और एंगेजिंग और कहानियां। तो ऐसे करके वो 5 6 साल तक अगर इस चीज में इन्वॉल्व है तो फिर 7वें साल फिर मुझे कुछ नहीं करना, फिर वो करेगा और फिर वो हमारे अर्जुन के कलेक्टिबल्स रखेगा, फिर जब उसके बच्चे होंगे उनको बोलेगा बेटा ये देखो, फिर वो हल्क के एक्शन फिगर नहीं दिखाएगा, फिर वो अर्जुन और भीम के एक्शन फिगर दिखाएगा। एंड दैट इज हाउ यू विल ट्रांसफर दिस थिंग टू द फ्यूचर जनरेशन, अदरवाइज इसका और कोई तरीका नहीं है। अगर आप छोटा छोटा साइलोज में करते रहोगे तो वो छोटा छोटा लेवल पे एफर्ट आपको फ्रूट्स देगा, बट एक ग्रैंड स्केल पे जो आप आउटपुट चाहते हो वो नहीं निकल के आएगा।
साथियों, आपको नीचे स्क्रीन पर एक लिंक दिखाई दे रही होगी, playrunbhoomi.com। इससे आप रणभूमि जो बोर्ड गेम है इसको अभी प्री ऑर्डर कर सकते हैं। 15 अप्रैल से इसकी शिपिंग चालू होने वाली है और अभी ये ऑफर में चल रही है क्योंकि ये लॉन्चिंग ऑफर था। तो आप अभी जाएं playrunbhoomi.com पर और ये ऑर्डर कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा कि उसमें अभी जैसे ऑडियंस वो देखेगी, जाएगी वेबसाइट पे, उनको वहाँ एक डिजिटल एक पिक्चर दिखेगी, ठीक है, लेकिन हम जो ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, उसको सामने देखना पसंद है, उसको एकदम पूरा ग्राफिक वाला सामान नहीं चाहिए उसको। हाँ, ये तो
तो
देखिए,
बेसिकली हाँ गो ऑन गो ऑन।
हाँ, तो मैं वही चाहता था कि एक बार लोगों को पहले दिखा दे थोड़ा कि कैसा है,
हाँ मतलब
और फिर उसमें
लोगों को
उसमें
ये ना लगे
हाँ
कि खाली
हाँ
फोटो बेच
बस
रहे हैं
हाँ हाँ
तो
वही
नहीं, तो ये हालांकि ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट कुछ दिन में आएगा मेरे हाथ में, बट ये प्रोटोटाइप है जो मेरे हाथ में है, और जो फाइनल आउटपुट आएगा वो इससे भी ज्यादा सुंदर दिखेगा और इससे भी बेहतर होगा जब आपको मिलेगा वो। तो ये तो बॉक्स है रणभूमि, आपको सामने दिखा देता हूँ कुरुक्षेत्र बोर्ड गेम बेस्ड ऑन द एपिक महाभारत। इसके अंदर आपको एक बोर्ड मिलेगा, वो बोर्ड कुछ ऐसा दिखेगा। इस बोर्ड में अगर आप देखोगे तो बोर्ड में ये शुरू होता है यहाँ से, श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद है हमारे बोर्ड को, तो श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं, ये यहाँ से युद्ध की प्रारंभ होता है, तो सारे जो टोकन्स होंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे और इसमें जो ये इवेंट्स हैं ये जैसे आपको दिख रहे हैं पिंक में कुछ लिखा है, कुछ आइकन बना है, कुछ ब्लू में आइकन बना है, तो ये जो इवेंट्स हैं ये युद्ध के इवेंट्स हैं। जैसे कुछ इवेंट आप देख के समझ सकते हो, अगर मैं दिखाऊं, जैसे आप यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये अब चक्रव्यूह जैसा दिख रहा है, चक्र बना हुआ है कॉन्सेप्ट, तो ये इवेंट है जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में एंटर किया। ऐसे ही आपको देखो और भी इवेंट दिखाते हैं, जैसे ये इवेंट है यहाँ पे अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चलाया, सो इस तरीके के बैटल के इवेंट्स हैं। और एंड में ये जो इवेंट है ये आपका ये युधिष्ठिर का राज्याभिषेक है, यहाँ पे युधिष्ठिर राजा बनते हैं। तो कुछ लोगों ने सवाल पूछा था सोशल मीडिया में कि आपके इसमें तो कौरव सेना भी जीत सकती है, मैंने कहा कौरव सेना नहीं जीतेगी, कौरव
सैनिक
सैनिक जीवित बचेगा। सो दोनों चीजें है ना, कि इसमें कभी भी ऐसा नहीं, आप क्योंकि आप दुर्योधन की तरह नहीं खेल रहे। अब इसके अंदर मैं दूसरी चीज दिखाता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप कैसे खेल रहे हो, आप क्या खेल रहे हो, क्या मतलब उसका सेटअप है। तो उसमें आपको एक तो क्या होता है कि युद्ध में जो होता है आपके सेना कभी भी सैनिक जो है वो अपनी मर्जी से लड़ाई नहीं लड़ रहे होते हैं, वो अपने सेनापति के कहने पे लड़ने जाते हैं, राइट। तो अब पहले दिन के बैटल में, जैसे पहले दिन के युद्ध में 5 जगह फियर्स बैटल चल रहा है, तो सैनिक कहाँ लड़ने जाएगा ये उसको कौन बताता है, ये उसको उसका कमांडर बताता है। तो ये है आपका कमांडर, ये डाइस है, इसको आप थ्रो करके आप बता सकते हैं कि भाई आपको 4 पे जाना है, 5 पे जाना है, 7 पे जाना है, कहाँ पे भी, तो 6 फेज डाइस है, तो एक टाइम में आप या तो पहले दिन के 5 में से किसी एक बैटल पे जाएंगे और उसमें से 4 या 3 हो सकता है आपके लिए सेफ हो और 1 या 2 हो सकता है आपके लिए खतरनाक, तो उस हिसाब से है। या फिर आपको लेट से 6 आ गया तो आप उस दिन आपको रेस्ट मिल गया, आप अगले दिन लड़ने गए। तो ऐसा भी होता है युद्ध में, राइट? ऐसा नहीं होता कि आप सब दिन वैसे लड़ते। अब जैसे कि आप जब आप खिलाड़ी हैं तो सबसे पहले तो आप चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे कि आप ये कुछ तो साफ नहीं दिख रहा है बट कोशिश करिए, ये एक हाथी का इमेज है, तो ये आपका प्लेयर टोकन है। आई थिंक वो जूम के इसलिए वो कैमरे का वो इशू है। तो ये एक टोकन्स हैं इस तरीके के छोटे छोटे, जिसमें आपके इंसिग्नियाज बनी हुई हैं अलग अलग किंगडम की। तो महाभारत में, और हमारा इससे ये भी बताने का मकसद है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि महाभारत दो कजिन्स के बीच में लड़ाई थी, नहीं, ऐसा नहीं था। भारत देश के ऑलमोस्ट हर किंगडम के राजा उसमें लड़ने आए थे, और ऑलमोस्ट मतलब कुछ लोग को जैसे रुक्मी वगैरह है तो उनका किंगडम विदर्भ वगैरह वो नहीं लड़े थे, लेकिन काफी मतलब ज्यादातर साउथ नॉर्थ लाइक सदर्न मोस्ट पांड्य राज भी पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे, राइट? आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो भगदत्त आए थे कौरवों की तरफ से लड़ने के लिए, तो आप ऊपर जाओगे तो मद्र और गांधार वो लड़ रहे थे आपके कौरवों की तरफ से, तो उधर से द्वारका से वृष्णी और नारायणी सेना आई थी लड़न। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरे हिंदुस्तान से महाभारत में पार्टिसिपेशन था। तो जो प्लेयर टोकन्स हैं वो हमने इस हिसाब से बनाए हैं कि वो 4 एलाइज पांडव के हमने सेलेक्ट किए और उनके हमने इंसिग्नियाज बनाए बेस्ड ऑन द रीडिंग जो हमने करी है, क्योंकि महाभारत में वो बहुत डिटेल में नहीं है कि भाई कौन सा किंगडम कैसा इंसिग्निया यूज करता है, हिंट्स हो सकते हैं कहीं कहीं बट एक्सप्लिसिटली नहीं है, तो वहां पे हमने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली और 8 किंगडम की हमने ऐसे इंसिग्नियाज बनाई, उनसे हमने टोकन बनाए। तो जब आप खेलोगे तो आप अपना टोकन सेलेक्ट करोगे तो जो टोकन आपके हाथ में आया उनके हिसाब से आपका अलाइनमेंट निर्धारित हो जाएगा, कि जैसे आपने हस्तिनापुर टोकन लिया तो आप कौरव सेना में हो गए, आपने वृष्णि का टोकन लिया तो आप पांडव सेना में हो गए, आपने मत्स्य का टोकन लिया आप पांडव सेना में हो गए, पांचाल का टोकन लिया पांडव सेना में हो गए, मद्र का टोकन लिया कौरव सेना में हो गए, अंग का टोकन लिया कौरव सेना में हो गए, नारायणी सेना का टोकन लिया आप कौरव सेना में हो गए। तो ऐसे आपकी कौन सी सेना में आप खेल रहे हैं वो आपका निर्धारित होगा। और इसमें जैसे कि मैंने दिखाया था कि पिंक और ब्लू दो अलग अलग उसमें इवेंट है, तो इससे पता लगेगा कि कौन सा इवेंट कौरवों के लिए फेवरेबल इवेंट है और कौन सा इवेंट पांडवों के लिए फेवरेबल इवेंट है। तो जब आप अपने फेवरेबल इवेंट में जाते हो तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, जब आप मतलब बैटल में आप कहीं पे आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको बूस्ट किया जाता है, राइट? आपको अगले दिन और अच्छे उसमें भेजा जाता है बूस्ट करके, ये सिपाही ने अच्छा लड़ाई लड़ा इसको अगले दिन कॉम्प्लेक्स कठिन लड़ाई में भेजा जाए। दूसरा होता है कि जब आपका एडवर्स बैटल में हो, आप एडवर्स इवेंट में हो जो आपके अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल इवेंट है, तो उसमें क्या होता है आपको आप स्लो हो जाते हो, आपको रेस्ट करना पड़ता है, तो उसमें आपको पीछे जाना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सेना में और आप कौन से इवेंट पे लैंड किया आप आगे या पीछे जा सकते हैं। तो ये तो हुई एक चीज कि आपको कैसे खेलना। आप ये जो वर्जन है, ये वाला वर्जन मैंने अपनी बेटी के साथ खेला था क्योंकि वो 5 ही साल की है, तो इसको हम बोलते हैं लाइट वर्जन, कि भाई इस वर्जन में आपको या बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सेटअप टाइम ऑलमोस्ट 0 है, और आप इसको कहीं पे भी आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं आपने खोला बोर्ड और खेल सकते हैं जैसे आप लूडो वगैरह खेलते होंगे।
असल में ये मेरे क्वेश्चन में भी था शामिल कि मतलब आज की जो जनरेशन है ना, आपने इसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ तो डाला होगा, ठीक है, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको आदत हो चुकी है हर चीज को पहले यूट्यूब पे सर्च करने की, कि अब जैसे रणभूमि गेम आया तो वो यूट्यूब पे देखेंगे कि रणभूमि गेम कैसे खेला जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे तो एक वीडियो आपको हो सकता है आप डाले भी, लेकिन अभी इस सेशन में भी आप एक बार बता दे प्रॉपर कि इंस्ट्रक्शंस क्या है और क्या वेरिएशंस हैं इसके।
हमने हमने इसमें एक और चीज आसान करी है कि रूल बुक तो है ही, तो रूल बुक में खाली गेम के रूल्स ही नहीं है, गेम के बारे में जैसे कि मैंने बोला महाभारत के बारे में थोड़ा जानकारी भी मिलेगी, तो जैसे हमने ये टोकन बनाया अलग अलग किंगडम के बारे में जानकारी मिलेगी, कौन से किंगडम का कमांडर कौन था, फिर इसमें जैसे ये इवेंट्स है तो उनके बारे में जानकारी मिलेगी कि कौन से इवेंट पे क्या हो रहा है। अब अगर दिख रहा है तो यहाँ पे देखो जैसे कुछ कुछ इवेंट्स के अंदर ऐसे सिंबल्स बने हुए हैं, ये सिंबल जो है ये दिव्यास्त्रों के सिंबल हैं कि उस बैटल में किसी सेनानी ने कोई दिव्यास्त्र छोड़ा, किस सेनानी ने छोड़ा वो आप देखोगे यहाँ पे ध्वजा बनी हुई है, जैसे ये पाम ट्री बना हुआ है तो ये भीष्म ने छोड़ा, राइट। तो ये सब इंफॉर्मेशन भी बुकलेट में है, बट उसके अलावा आसान करने के लिए हमने कार्ड भी इंट्रोड्यूस किया है। उसमें बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप वो एक कार्ड में सारा इंफॉर्मेशन पढ़ के आप खेल सकते हो, आपको पूरा वो बुकलेट पढ़ना जरूरी नहीं है खेलने के लिए, वो आप अपने फ्री टाइम में बाद में पहले जब भी मन करे आप पढ़ के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, और फिर उसके बाद हमारे ऐप पे आके उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और बहुत डीप में घुसना हो एज ए पेरेंट अगर आपको चाहिए तो आप तो फिर महाभारत भी पढ़ ही सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसमें दिव्यास्त्रों का सिंबल्स दिए हुए थे, अब वो दिव्यास्त्रों के जो सिंबल्स दिए हैं वो उनका क्या मकसद है? उसका ये मकसद है कि उस समय आपको किसी ने दिव्यास्त्र से हमला कर दिया, अब उस दिव्यास्त्र से आप पे अटैक हुआ तो दिव्यास्त्रों को काटा जा सकता है, अनुकूल दिव्यास्त्र जो हमारे उसमें था ना ट्रेलर वीडियो में भी है कि हर दिव्यास्त्र को उसके काउंटर किया जा सकता है अगर आपके पास उसका काउंटर है तो हम उसके साथ एक कार्ड का डेक देंगे, उसमें 44 कार्ड रहेंगे। तो हमने बहुत मेहनत करके रिसर्च करके 21 दिव्यास्त्र सेलेक्ट किए हैं, और वो 21 दिव्यास्त्र को 3 लेवल में बांटा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 क्या है, त्रिदेवों के अस्त्र हो गए जो कि बहुत पावरफुल है, ब्रह्मास्त्र है, रुद्रास्त्र है, भार्गवास्त्र, तुम्हारा ये नारायणास्त्र, इस तरीके के पावरफुल अस्त्र है, वो लेवल 1 की कैटेगरी में आते हैं। देन लेवल 2 में आपके जो 30 गॉड्स के अस्त्र हैं, जैसे इंद्र और उनके जो वायु अग्नि उन देवों के अस्त्र हैं, तो इंद्रास्त्र हो गया, वायव्यास्त्र हो गया, विशोषण अस्त्र हो गया, तुम्हारा आग्नेयास्त्र हो गया, तो ये सब अस्त्र लेवल 2 की श्रेणी में आते हैं। और लेवल 3 में आते हैं आपके जो आपके मायावी अस्त्र थे, ज्यादातर गंधर्वों के अस्त्र थे, तो जैसे आपका सम्मोहन अस्त्र हो गया, तो ये जनरली नॉन फेटल थे और इसको लेके आप मतलब सामने वाले को आपने मूर्छित कर दिया, आपने उसको स्लो डाउन कर दिया, नागास्त्र चला दिया तो नागपाश में बंध गया, मरा नहीं लेकिन वो मूव नहीं कर सकता, तो इस तरीके के अस्त्र भी, और सबके अपने अपने काउंटर भी हैं। तो आपने ऐसे बोर्ड में देखो आपको लेट से कि वहां पे आग्नेयास्त्र है, या लेट से आपको वहां पे लेट से वरुणास्त्र मिला। अब वरुणास्त्र क्या होता है? वरुणास्त्र वरुण देव का अस्त्र है, भयानक वर्षा होगी, पानी आएगा आपके वहां पे, तो आपके पास अगर मान लो वायव्यास्त्र है, आपके पास अगर वायव्यास्त्र है तो आप इसको यूज करेंगे, और आपको फिर वो जो आपको पीछे जाना पड़ता नॉर्मल सिचुएशन में वो आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप उस वायव्यास्त्र से उस वरुणास्त्र के असर को रोक सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये स्किल वाला चीज भी आ जाता है कि कौन सा समय कौन सा होना, और थोड़ा लग भी है कि आपने रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट किए गेम के कार्ड्स, तो जरूरी नहीं है आपके पास उसका काउंटर हो, तो जब है तो आप बच सकते हैं, जब नहीं है तो आप नहीं बच सकते। और फिर इसमें क्या है, अगर मान लो दो सोल्जर आ गए सेम ब्लॉक पे तो आप आपस में भी लड़ सकते हैं अपने दिव्यास्त्रों को यूज करके, कि जो इनकमिंग सोल्जर है उसने मारा दिव्यास्त्र, तो जो दूसरा सोल्जर है वो उसको काउंटर कर सकता है, अगर उसके पास काउंटर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसके कार्ड में लिखा हुआ है कि अगर नहीं है तो क्या करेगा, तो उसमें मेंशन है कि भाई 3 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा या 2 स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, मतलब उसका पेनल्टी भरना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये दिव्यास्त्रों का यूज किया जाता है। इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि हमने ये दिव्यास्त्रों को ना एक विजुअल आइडेंटिटी देने की कोशिश करी है, बहुत मेहनत करके उसको किया है कि अगर आप देखोगे तो सबका एक एक विजुअल आइडेंटिटी कि वायव्यास्त्र है उसमें क्या है, अगर आप वायव्यास्त्र का इमेज देखोगे तो जब आपके पास कार्ड हाथ में आएगा आप देखोगे उसमें एक खोखला सा है वो उसका डिजाइन, कि उसके अंदर वायु है, राइट, हर उसकी एक एनर्जी है, एनर्जी फील्ड है कि उससे जो एनर्जी निकलती होगी वो इस तरीके की निकलती होगी। तो ये जो है ये बहुत ही मेहनत करके बहुत ही सोच समझ कर हमने एक एक दिव्यास्त्र को एक विजुअल आइडेंटिटी देने की कोशिश करी है, और उसकी एक एनर्जी डिफाइन करने की कोशिश करी है कि जब ये एक्सप्लोजन होता होगा या जब ये फायर किया जाता होगा तो इस तरीके की एनर्जी विजुअली दिखती होगी। तो वो एक बहुत अच्छी चीज है जो कि इस चीज को समझने में और मतलब और मदद करेगी। जैसे आप महाभारत पढ़ते हो तो उसमें आपको एक इमेजिनेशन लगानी पड़ती है कि क्या हुआ होगा, उसमें तो बोला कि उन्होंने मंत्र पढ़ा और ऐसा किया, बट विजुअली कैसा दिखता होगा वो एक 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 हेल्पिंग टूल भी हो सकता है कि जब आप उस लिटरेचर को एक्सप्लोर करो तो आप ये विजुअल आइडेंटिटी को भी यूज कर सकते हो। जैसे हमने वीडियोस भी बनाए हैं उसमें वो इन्वोक किया, फायर किया, आग निकली, राइट, आग ने अस्त्र चलाया, तो उस तरीके से हमने उसको एक एक कार्ड, एक एक इंसिग्निया बहुत सोच समझ के बनाई है। और वॉरियर्स की इंसिग्निया तो महाभारत में डिफाइंड है, अब उसको हमने थोड़ा मिनिएचर वर्जन देने के लिए थोड़ा बहुत ऑब्वियसली क्रिएटिव लिबर्टी ली है, लेकिन ज्यादातर इंफॉर्मेशन जो हमारे बोर्ड में है वो आप 90 to 95% महाभारत के एक्यूरेट है। वेदव्यास की महाभारत भी यार जो मतलब बोरी एडिशन या गीता प्रेस एडिशन आप रेफर करोगे तो आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ा बहुत हमने उसमें क्रिएटिव लिबर्टी ली है क्योंकि उसको गेमिफाई करना है, उसको बोर्ड पे डालना है, उसको मतलब आपको इमेज भी छोटा मिनिएचर वर्जन चाहिए तो वो सब करने के लिए हमने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी ली है। तो वो आई थिंक और जो हमने क्रिएटिव लिबर्टी ली है वो इस तरीके की नहीं है कि आपकी कहानी बदल जाए, तो वैसा नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे अब वहां पे जो जो वेदव्यास जी ने या संजय ने जो बैटल डिस्क्राइब किए वो मेन मेन वॉरियर्स के डिस्क्राइब किए, तो ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई ऐसा अननेम्ड वॉरियर नहीं रहा होगा जिसने ये नहीं किया होगा, किया भी हो सकता है राइट, बट उसकी जर्नी से पूरे ओवरऑल कहानी पे फर्क नहीं पड़ा तो संजय ने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया। हम उसको गेम के फॉर्म में एक्सपीरियंस करना सिखा रहे हैं कि भाई आप अगर आप उस बैटल फील्ड में होते तो आपको क्या क्या ऑब्स्टेकल से गुजरना पड़ता, किस तरीके के दिव्यास्त्रों से गुजरना पड़ता, किस तरीके से बैटल से गुजरना पड़ता, कहीं पे आपको चांस भी लूज करनी पड़ सकती है, कहीं पे आपको पीछे जाना पड़ेगा, कहीं पे आपको आगे जंप मिलेगा, कहीं पे आप मर भी सकते हैं। तो इसमें ऐसे इवेंट भी है कि आप उसमें अगर वहां पे पहुंच गए तो यू मे नॉट इवन बी एबल टू फिनिश द गेम, यू विल डाई, दैट्स अबाउट सर्वाइवल, क्योंकि बैटल में लोग मरते भी थे। तो ऐसा है। और ये हमने बहुत ज्यादा इस पे मतलब जो रिसर्च थी वो तो थी, उसके बाद जो डिजाइन थी उसमें भी बहुत हमने मेहनत करी थी, बहुत हमने मतलब ऑलमोस्ट 6 महीने का समय लगाया इसको डिजाइन करने में। तो इसको जरूर खेलिए।
और एक
और
एक एक जो संशय हो सकता है खेलते समय लोगों के अंदर आए कि मैं तो कौरवों के पक्ष से लड़ रहा हूँ, हो सकता है मेरे लिए फेवरेबल मोमेंट ही ना आए पूरे उसमें, तो मैं ये पूछना
नहीं
चाहूंगा जो कि गेम से तो जुड़ा ही है साथ ही साथ थोड़ा महाभारत से भी जुड़ा हुआ है, कि कौरवों और पांडवों का जो पलड़ा रहा वो युद्ध में कब कब भारी रहा, अगर कुछ
तो युद्ध
इवेंट्स
में,
बता पाए।
युद्ध में अगर देखो तो कौरव और पांडव का पलड़ा जो था वो मतलब ऊपर नीचे होता रहता था। तो कोई दिन ऐसे होते थे जब कौरवों के पक्ष में मातम मन रहा होता था और पांडव के पक्ष सेलिब्रेट कर रहे होते थे, कोई दिन होते थे जब पांडव मातम मना रहे होते थे, कौरव सेलिब्रेट कर रहे होते थे। तो जैसे भीष्म जब जिंदा थे तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि भीष्म ने डोमिनेट किया बैटल, 9th डे का बैटल भीष्म ने इतना डोमिनेट किया कि युधिष्ठिर हाथ जोड़ के बैठ गए कि हम कैसे मारे आपको बताइए। तो वो दिन था जब पांड कौरव सेलिब्रेट कर रहे थे, ऐसे जैसे 13th डे का दोनों रो रहे थे कि पांडव रो रहे थे क्योंकि उनका अर्जुन का पुत्र मर गया, प्रिय पुत्र अभिमन्यु, और कौरव इसलिए रो रहे थे कि अभिमन्यु अंदर घुसा तो उसने इतनी सारी सेना को मौत के घाट उतार दिया जिसमें कि मतलब समझ रहे। तो वो दिन दोनों के लिए ही था, बट अगर आप एज ए रेगुलर वॉरियर की तरह गेम में खेल रहे होगे तो 13th डे कौरवों के लिए ज्यादा विनाशकारी था क्योंकि पांडवों का तो एक बड़ा योद्धा मरा लेकिन कौरवों की तो पूरी पूरी उन्होंने मतलब लाशों के ढेर बिछा दिए। तो इस तरीके से अगर देखोगे तो जो गेम में हमने क्या किया, गेम में हमने उसको बैलेंस करने की कोशिश करी है। तो आप चाहे कौरव की तरह खेलिए या चाहे पांडव की तरह खेलिए, इसमें जो इवेंट्स हैं वो दोनों के लिए मैच हैं। तो अगर उसमें लेट से 12 इवेंट कौरवों के लिए फेवरेबल है तो 12 पांडवों के लिए फेवरेबल होंगे, और अगर उसमें कुछ स्पेशल इवेंट्स है तो जो स्पेशल इवेंट कौरवों के लिए वो कहीं ना कहीं पांडवों के लिए भी होगा एंड वाइस वर्सा। तो अगर कहीं पे है कि भाई जैसे अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र चलाया तो अपोनेंट को एक चांस मिस करनी है, तो वो कौरवों के लिए फेवरेबल इवेंट है, पांडव वहां पहुंचा तो उसको एक चांस मिस करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप उसका इक्विवेलेंट इवेंट है घटोत्कच, जब घटोत्कच मरा था उसके नीचे सेना दब गई थी, तो मतलब आप उसके नीचे दब गए तो जब तक कोई आपके आपको निकालेगा नहीं तब तक आप दबे हुए हैं, तो उसमें आपको कौरव सैनिक को चांसेस। तो हमने उसको इस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करी है कि गेम बैलेंस्ड रहे, आप किसी भी टोकन को उठाइए आपके सर्वाइवल के या जीतने के चांसेस सेम ही होंगे। इसमें ये नहीं होगा कि आप कौरव किस तरह के खेलेंगे तो आपको जीतने के चांसेस कम होंगे क्योंकि एंड में तो पांडव जीते थे। अगर देखो तो इन टर्म्स ऑफ द सर्वाइवर्स देयर वर नॉट मेनी ऑन आइदर साइड, और दोनों के लिए ही बहुत भयावह था युद्ध। लेकिन अगर आप देखोगे कि क्या बोलते हैं गेम में वो है। और दूसरा चीज, ये सवाल मुझसे पहले भी कई बार लोगों ने पूछा जब डेवलपमेंट जर्नी में थे कि भाई क्या लोग कौरव का सैनिक बन बन के लड़ना चाहेंगे, तो उसका मैंने ये जवाब दिया था कि देखो जो सेना में सैनिक लड़ रहे थे उसमें कोई अच्छा बुरा बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो ज्यादातर अपने राज्य के लिए लड़ रहे थे और अपने कमांडर के निर्देश फॉलो कर रहे थे, राइट। वो वहां पे अब, और अगर आप मेजर वॉरियर्स भी ले लो तो आप क्या बोलोगे, भीष्म क्या अच्छे आदमी थे या बुरे आदमी थे, या द्रोणाचार्य अच्छे आदमी थे या बुरे आदमी थे, करेक्ट। शल्य क्या था, शल्य को तो कॉर्नर कर लिया, वो तो चाहते थे पांडवों की तरह से लड़ना और लड़ना पड़ा उनको कौरवों की तरह से। नारायणी सेना तो श्री कृष्ण की सेना थी, अगर आप नारायणी सेना के सैनिक हो तो आप श्री कृष्ण के सैनिक हो, लेकिन लड़ आप कौरवों की तरह से रहे। तो ऐसा नहीं है कि आपने नारायणी सेना का टोकन सेलेक्ट किया तो आप बुरे आदमी हो, ऐसा नहीं होता। तो जैसे वो आप बोलो कि उनो कार्ड्स के क्रिकेट वगैरह के गेम है अगर, तो क्या आप मतलब कि पाकिस्तानी प्लेयर का कार्ड है तो उसको क्या आप जला के फेंक दोगे, उसकी भी कुछ वो है, आप उसको उस तरीके से देखोगे ना कि भाई इसका जो परफॉर्मेंस था वो मुझे जिता सकता है या नहीं। आप ये नहीं देखोगे इमरान खान है फेंक दो हार गए, मैंने सरेंडर कर दिया मैं नहीं खेलू, ऐसा नहीं करोगे आप, है ना। तो गेम है और गेम का उद्देश्य है आपको उसके बारे में जानकारी देना। जब आप जानकारी लोगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि इसमें कितने ग्रे लाइंस हैं, कितनी ब्लैक लाइंस हैं, कितनी व्हाइट लाइंस हैं, और तब तक आप थोड़े और बड़े हो चुके होंगे, आपको थोड़ी समझदारी भी बेटर होगी, तो आप अपना उस बारे में सोच भी सकते हो, माँ बाप भी होंगे गाइड करने के लिए जो आपको गाइड भी कर सकते हैं अगर आपको डाउट हो, तो वो एक अच्छी चीज है। जर्नी उस तरीके की हम तैयार कर रहे हैं, बाकी डेस्टिनेशन आदमी खुद ढूंढ लेगा।
इस पे मुझे एक चीज मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताना चाहता हूँ। जब मैंने ये गेम की लिंक शेयर की, तो भले ही हम देखते हैं कि ये सब चीजें जो मूल रूप से देखा जाता है कि बच्चे ज्यादा पसंद करेंगे या बच्चों को टारगेट करके बनाई गई है, लेकिन जैसे मैं उस दौर से गुजरा हूँ, हमने महाभारत देखी है टीवी चैनल्स पे, आज की पीढ़ी जो बिल्कुल नई पीढ़ी है वो उसने अभी हो सकता है ना देखी हो, तो मेरे कुछ दोस्तों के मेरे पास मैसेज आए कि मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं प्री ऑर्डर कर रहा हूँ, क्योंकि उनको उनको एक वो मिला ना कि उनने जो एक तजुर्बा लिया था वो खुद से
हाँ
उस चीज में और उतर के उसको और अनुभव ले पा रहे हैं उस चीज का, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज है,
तो
तो जो
ये
भी देख।
बच्चों और बड़ों दोनों इसको एंजॉय करेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था कि जैसे इस तरीके की एक बुकलेट हमने बनाई है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन भी है। अब आप जैसे देखोगे कि भाई ये किसका वो है, तो ये लायन ये भीम का है, तो अब फिर उससे आपको और इन्फॉर्मेशन है, और कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन इसमें है जो शायद जिन लोगों ने महाभारत देखी होगी उनको भी नहीं पता होगी, टीवी में जिन्होंने देखी होगी, मतलब कईयों के तो नाम भी नहीं पता होंगे। जैसे भगदत्त का कैरेक्टर महाभारत में दिखाया ही नहीं, आप देखोगे हीरावान का कैरेक्टर महाभारत टीवी सीरियल में दिखाया ही नहीं गया। इसमें और कैरेक्टर ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको मतलब आपको पता भी नहीं होगा, और आपके लिए इसमें मतलब कोई भी हो उसके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है इसमें जो कि यूजफुल होगा, और लोग उसको बाकी कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसके बारे में हो सकता है लोगों को ना पता हो, जैसे इसमें जो इवेंट्स हमने डिस्क्राइब किए हैं तो उसके बारे में जान सकते हैं। एक चीज इसमें इंटरेस्टिंग है कि जो इवेंट्स बहुत पॉपुलर थे वो शायद आपको ना मिलेंगे, कि जैसे अब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई बहुत पॉपुलर इवेंट, बट वो बोर्ड पे नहीं मिलेगा आपको। क्यों नहीं मिलेगा, उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि जब धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का गला काटा तो एज ए रेगुलर सोल्जर आपको कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आप एक रथी या सोल्जर या वॉरियर की तरह खेल रहे हैं, तो धृष्टद्युम्न द्रोणाचार्य का अगर गला काट रहे हैं तो आप पे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट इम्पैक्ट, राइट। आप जब तक किसी बैटल में हेड ऑन नहीं है या कोई ऐसा दिव्यास्त्र छोड़ा गया जिसका कोई कोलेटरल डैमेज में आप नहीं फंस रहे हैं, तब तक आप मूव करते जाएंगे, राइट। तो उस हिसाब से इसको बनाया, तो बहुत सारे इसमें ऐसे इवेंट्स मिलेंगे जो हो सकता है आपको पॉपुलर उसमें ना मिले नैरेटिव में, लेकिन महाभारत में है वो इवेंट। और वो आप जैसे समसप्तक लोगों के का जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो एक समय ऐसा है जब बहुत सारे हजारों वॉरियर अर्जुन की तरफ एक साथ झपटे और अर्जुन के पास बहुत करीब आने लगे, तो अर्जुन ने नागास्त्र का प्रयोग करके उनके हाथ पांव बांध दिए तो ताकि वो स्लो हो जाए, राइट। और तो सुशर्मा वो भी अच्छा वॉरियर था, उसने सुपर्णास्त्र का प्रयोग करके वो नागों को उसको काउंटर किया। अब ये इवेंट आपको नहीं पता होगा कि भाई टीवी में दिखाया नहीं गया और ज्यादातर लोगों ने इतना वो समसप्तक बैटल इतना डिटेल में नहीं पढ़ा, क्योंकि जब टीवी में दिखा रहे थे 13वें दिन का युद्ध, तो अर्जुन और समसप्तक की लड़ाई उन्होंने दिखाई नहीं, उनको तो ले जाते हुए दिखा दिया, अर्जुन चले गए। उसके बाद तो पूरा फोकस अभिमन्यु पे था उस दिन, तो वो जो युद्ध है वो आपको पता भी नहीं हो सकता है, राइट। लेकिन आपको नई जानकारी मिलेगी, तो आप बड़े अगर एडल्ट भी हैं उनका, आप एज एन एडल्ट भी खेल सकते हैं, और बोर्ड गेम जिनको पसंद है खेलना उनको तो अच्छा ही लगेगा, आप किसी भी एज ग्रुप में हो। बट अगर आपको बच्चों को महाभारत से इंट्रोड्यूस करवाना है, दिस इज द बेस्ट वे। और ये हमने उस हिसाब से ही बनाया है, बुकलेट भी उस हिसाब से बनाई है, और इसमें आपको थोड़ा डिसीजन मेकिंग भी सीखेंगे। जो हमारा कार्ड बनाया है वो फ्लो चार्ट जैसा है, तो कल को हो सकता है आपका बच्चा को लॉजिकल रीजनिंग वगैरह का भी एक थोड़ा उसको इंट्रोडक्शन मिलेगा कि भाई ये होगा तो ये हुआ तो मैं ये करूं, दिव्यास्त्र है तो ये हो, नहीं है तो क्या हो, सामने कोई अपोजिंग वॉरियर है तो क्या होगा, नहीं है तो क्या होगा, तो एक डिसीजन ट्री भी वो सीखेगा थोड़ा सा, मतलब वो रेगुलर जो आपके साथ 7+ एज ग्रुप वाले बच्चे हैं उनको ये सब चीजें जनरली सिखाई जाती हैं, वो सीखने लगते हैं ये सब चीजें, वो कर पाते हैं इजीली। तो ये मतलब आपके स्किल डेवलपमेंट में भी ठीक है, आपका मोरल डेवलपमेंट के लिए भी ठीक है, और एंटरटेनमेंट तो है ही। और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये ऐसा गेम है जो पेरेंट्स भी बच्चों के साथ इक्वली एंजॉय करेंगे। बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं जो पेरेंट्स मुंह से कोड़ के बच्चों के साथ खेल लेते हैं कि यार बच्चा बहुत दिन से जिद कर रहा है, इसके साथ में कुछ नहीं खेला, चलो खेलते हैं, बट पेरेंट्स वो खेल रहे होते हैं क्योंकि बच्चा जिद कर रहा होता है। ये एक ऐसा गेम होगा जो उनको भी मजा आएगा खेलने में, कि वो फिर बोलेंगे बेटा चलो एक राउंड रणभूमि खेलते हैं। तो वो सोच समझ के हमने बनाया है, और होपफुली इससे थोड़ा एक बॉन्डिंग भी बढ़ेगी, थोड़ा और बेटर सोशल इम्पैक्ट भी होगा, तो वो सब सोचा है।
एक एक इसमें एक चीज मुझे अभी तक जो पूरे सत्र में समझ में आई वो ये थी कि कहीं ना कहीं ये जो पूरा एक पूरा पहले तो एक विचार आया कि सूत्रधार बनाए, है ना, वो भी शुरुआत में थोड़ा बहुत ब्लर रहा होगा कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, एग्जैक्टली क्या करना है। फिर धीरे धीरे उसमें अध्ययन किया गया और रिसर्च की गई और चीजें जोड़ी गई और उसमें बहुत सारा कुछ और बनाने का अभी भी लगातार प्रयासरत हैं। तो पहले तो आगे मैं कहूँ, इसके पहले मैं बताना चाहूंगा कि प्री ऑर्डर आप रणभूमि बोर्ड गेम जो है वो कर सकते हैं। आपको इसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद मैं ये भी इसमें जोड़ना चाहूंगा कि हो सकता है आगे के कुछ सत्रों में आपको इस गेम की और डिटेलिंग्स के बारे में और बताया जाए और बेहतरीन जानकारी दी जा सके, ताकि जब 15 तारीख से ये गेम शिप होना चालू हो उसके पहले ही आपको गेम की भरपूर जानकारी हो और आप सीधा एकदम जैसा यूज टू होते हैं कि आज आपको अगर बल्ला पकड़ा दिया जाए तो आप क्रिकेट सीधा खेल सकते हैं, उस तरीके से आपको शुरू से तैयार करने की हमारा पूरा प्रयास रहेगा। क्योंकि जिस तैयारी से हम गुजरे हैं हम चाहते हैं कि आप भी उतनी ही, एक वो शब्द इस्तेमाल करा जाता है कि पीठ पक्की करके आए। तो आप ये चूंकि युद्ध का खेल है तो आप युद्ध में जब उतरते हैं तो आप पीठ पक्की करके ही उतरे, तो हमारा
नहीं
प्रयास रहेगा।
अनुज, उसमें पीठ पक्की करने की इतनी जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हमने उसको बनाया है, आप वो बल्ला पकड़ लिया तो गेंद में मारने जितना ही है उसका, वो कि उसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि कुछ रीडिंग करनी पड़ेगी या कुछ आपको ट्यूटोरियल देखने पड़ेंगे, वैसी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपको बॉक्स डिलीवर होगा, आप बॉक्स खोलेंगे और आपको जैसे जैसे आप सारे एसेट सामने निकाल के रखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लग जाएगा कि इससे खेला कैसे जाए। और जैसा कि मैंने बोला कि मेरा उद्देश्य ये था कि इस गेम को ज्यादा से ज्यादा खेला जाए, तो हमने उसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश नहीं करी है। क्योंकि क्या होता है ना, जब गेम बहुत कॉम्प्लेक्स, ऐसे गेम है जिनका सेटअप टाइम 30 से 40 मिनट होता है, कई कई गेम है 15 मिनट सेटअप टाइम है। अब जो गेम आदमी 15 मिनट सेटअप करने में लगेगा, वो आदमी रोज नहीं खेलेगा। रोज वो कौन सा गेम खेलता है कि अरे चलो राइट निकल पड़े, अभी निकाला लूडो, निकाला लूडो सांप सीढ़ी क्यों इतने पॉपुलर, उसको सेटअप करने में टाइम नहीं लगता। वो सेटअप मतलब आपने गोटियां सेलेक्ट करी कि भाई मेरी पीली मेरी हरी, और वो करके बैठे और खेलना चालू कर दिया। कैरम क्यों लोग इतना खेलते हैं, क्योंकि उसका सेटअप टाइम प्रैक्टिकली जीरो है। मैं चाहता हूं कि ये रणभूमि भी वैसे ही जोन में आए, कि इसका खेलने का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई हो, मतलब ऐसा नहीं हो कि इसको खेलने के लिए आपको प्लान करना पड़ रहा है कि आज रात में हम रणभूमि खेलेंगे, नहीं, आप बैठे हुए हैं, आप बोल रहे चलो रणभूमि निकालो खेलते हैं। तो सेकेंड वन इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर, और फर्स्ट वन तो उसके लिए अगर आवश्यकता होगी और थोड़ा और उसके कॉम्प्लेक्स वर्जन जैसे मैंने बोला कि वो भी हम बनाएंगे, हमारे पास विजन है, थॉट प्रोसेस है। तो जैसे कि रणभूमि जो हमने बनाया, रणभूमि एक ब्रांड बना रहे हैं हम लोग, तो रणभूमि के अंदर ये पहला गेम है, ऐसे रणभूमि के अंदर और भी गेम हम लोग बनाएंगे हम, और केवल महाभारत पे ही नहीं, हम रामायण और पुराणों पे और हमारे इतिहास पे वो सब इवेंट जो हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि जो बच्चे हमारे नहीं ज्ञान अर्जन कर पा रहे हैं किसी न किसी कारण से, लेकिन एज ए पेरेंट, एज एन इंडियन, वी वॉन्ट देम टू नो अबाउट देम, वो उस तरीके के सारे चीजों पे हम इस तरीके के एक्टिविटीज बनाएंगे। हम कार्ड गेम भी बनाएंगे, जैसे हमारे वो दिव्यास्त्र कार्ड का हमने डेक बनाया, 44 कार्ड का, हम दिव्यास्त्रों पे कार्ड गेम भी बनाएंगे। हमारे जो इसमें कैरेक्टर्स हैं उन सबके हमने विजुअल आइडेंटिटी भी बनाई है जो इस गेम में नहीं है, बट उसके भी हम कार्ड्स वगैरह बना रहे हैं। तो इसके अराउंड एक यूनिवर्स बिल्ड कर रहे हैं। तो रणभूमि खाली एक गेम नहीं है, रणभूमि एक इकोसिस्टम बनेगा जिसमें ये गेम पहला एंट्री है, इसने नींव को खोदी है। अब इसके ऊपर हम और महल बनाने के प्रयास करेंगे, और हम चाहते हैं कि एक दिन वो महल इतना बड़ा बने कि दुनिया भर के लोगों को इस चीज में मजा आए। और अगर वो दिन आया कि भाई यूरोप में बैठा कोई एक बच्चा बोलता है पापा पापा हम दशहरा मनाते हैं, जैसे मेरी बेटी बोलती है हेलोवीन मनाया जाए, तो अगर हम वो कर पाए तो बहुत ही अच्छा है। और मुझे मेरा मानना यह है कि कहानियों के माध्यम से ये किया जा सकता है। 100 साल से डिज्नी कुप ने ये प्रयास किया हुआ है, राइट? हमारा जो इन्फ्लुएंस है मोस्टली डिज्नी या वो जो वहां की कहानियां हम देखते हैं उनके थ्रू है। हमने अपने एंड पे अपनी कहानियों को इग्नोर किया और वैसा प्रयास नहीं किया है। तो अगर हम करेंगे तो मेरा ये मानना है कि ये अचीव करना मुश्किल नहीं है, ये हम कर सकते हैं। मेहनत लगेगी, सबका साथ लगेगा, और अगर लोगों ने साथ दिया तो ये बात मैं गारंटी देता हूं कि हम लोग ये करके दिखाएंगे, और हमारे लाइफ टाइम में करके दिखाएंगे, और हमारे बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े होंगे जहां पे उनको ये नहीं लगेगा कि हम इन्फीरियर हैं किसी से, उनको ये लगेगा कि हम सबके बराबर हैं या बेहतर ही हैं।
तो कहीं ना कहीं एक लंबी यात्रा करके सूत्रधार आया है। मैंने इस सत्र के दौरान अमन अक्षर के 2 मुक्तक पढ़े थे, और ये जो पूरी यात्रा मैंने अभी सुनी और कैसे इस चीज को एक रूप दिया गया, एक साकार रूप दिया गया, उस पर अमन अक्षर का 1 मुक्तक और पढ़ के मैं इस सत्र को समाप्त करूंगा। लेकिन आप हमारे साथ हर शनिवार रविवार शाम 7 बजे जुड़े रहें, इसी तरह से आपको कई सारे सत्र हम लेकर आएंगे। तो मुक्तक कुछ ऐसा है कि अधबसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, अधबसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए थे। तो कहीं ना कहीं वो ज्ञान जो लेकर सूत्रधार आगे बढ़ा और उसी को और सतत चला रहा है ताकि नई पीढ़ी को भी वो ज्ञान मिल सके, नई पीढ़ी भी उस ज्ञान का अर्जन करके एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ सके, उसके लिए मैं गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़े और उन्होंने रणभूमि कुरुक्षेत्र।
अनुज,
हाँ
जाने से
बताइए।
पहले मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, और वो है कि अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पीछे ये क्या है, ये एविडेंस है कि मेरी एक 6 साल की बेटी है, और जो मैं कर रहा हूं मेरा एक पर्सनल उसमें मोटिवेशन है कि मेरे जो बच्चे हैं वो एक ऐसे हिंदुस्तान में बड़े हों जहां पे उनको ये ना लगे कि वो किसी से कमतर हैं। और तो जो मेरे बच्चे के लिए मैं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सारे बच्चों को वो एक विजिबिलिटी मिले, वो एक रास्ता मिले, और मैं उसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स हैं, सारे पेरेंट्स को जुड़ना पड़ेगा, उनको ये चीज को लेके एक हमारे मतलब साथ हमारा सपोर्ट करिए, और हमारे गेम्स को खेलिए, हमारे वीडियोस को देखिए, और हमारे यूट्यूब वगैरह पे सब्सक्राइब करिए, यूट्यूब पे हमारे सूत्रधार किड्स करके हमने अलग चैनल निकाला है, जो बच्चे भी इंडिपेंडेंटली देख सकते हैं, क्योंकि किड्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट मिल नहीं रहा है हिंदुस्तान में स्पेशली। बहुत छोटे बच्चों के लिए फिर भी है, बट थोड़े जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, मतलब 5-6 साल के और ये उससे बड़े हो जाते हैं, उनके लिए कोई यूट्यूब में अच्छा ढंग का कंटेंट नहीं है। तो ये सब हमारा एक प्रयास है, और मैंने जान के आज बैनर नहीं लगाया, मैं कहा ताकि लोग ये देख सकें, मेरी बेटी है जो ये आर्ट वर्क बना बना के स्टिकी नोट्स दीवार पे चिपकाती रहती है, और किसी में ज्वालामुखी फूट रहा है, किसी में हार्ट बने हैं, किसी में फ्लावर बने हैं, तो उसका एक क्रिएटिविटी है जो इसके थ्रू निकालती है, और मैं चाहता हूँ कि उसको मैं ये चीजें ट्रांसफर करूँ, और वो भी ये इन सब कहानियों के बारे में जाने। कहानियां तो हम ऑलरेडी सुनाते हैं, गेम भी खिलाएंगे उसको, पजल्स भी मैंने उसको खिलाई थी जब वो 4-5 साल की थी और उसको पसंद आई थी, तो फिर उससे हमने पजल्स निकाली। तो मैं एक यही कहना चाह रहा था खत्म करने से पहले, कि ये ऐसा नहीं है कि हमको खाली एक बिजनेस की तरह सेटअप करना है, बिजनेस बनना जरूरी है क्योंकि इसको सस्टेन करना है, अगर हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे तो ये प्रयास खत्म हो जाएगा। तो बिजनेस बनाना तो जरूरी है, लेकिन एक उसमें एक सोशल इम्पैक्ट है, एक पर्सनल मोटिवेशन है, और तो ऐसा नहीं है कि भाई लोगों को आप एक्सप्लॉइट कर लो महाभारत रामायण के नाम पे, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, और हम चाहते हैं कि लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और हमारे इस प्रयास में हमारा साथ दें। तो एक तरीका साथ देने का है कि आप playranbhoomi.com पे जाइए, हमारा गेम बुक करिए, और जैसे ही आपको डिलीवर होता है उसको खेलिए, इसके बारे में सोशल मीडिया में पोस्ट करिए, बताइए और लोगों को, अपने परिवारजनों को बताइए, अपने मित्रजनों को बताइए, आप अगर इंस्टाग्राम में एक्टिव है वहां पे आप पोस्ट करिए माय सूत्रधार को टैग करिए, आप ट्विटर में एक्टिव है वहां पर पोस्ट करिए माय सूत्रधार टैग करिए, आप अगर यूट्यूब में जा रहे हैं कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वहां पे भी आप माय सूत्रधार टैग कर सकते हैं, माय सूत्रधार हर जगह अवेलेबल है, फेसबुक में भी है माय सूत्रधार, तो आप ये सब चैनल्स पे हमको फॉलो कर सकते हैं, हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हमें फीडबैक दे सकते हैं, और कुछ अगर आपको है कि हमको कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं जिससे कि हमें एक राह मिले, डायरेक्शन मिले, वो भी कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, जो भी माध्यम में आप कंफर्टेबल हैं उस माध्यम को यूज करिए और हमसे इंटरेक्ट करिए, हमें अच्छा लगेगा और हम सीखकर और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।